कथा प्रसंग को अभी हम आगे गोवर्धन लीला की ओर ले चलें, उससे पूर्व दो शब्द माननीय मंत्री जी कहेंगे। आप लोग सब सावधानी से बैठकर के श्रवण करें। गोवर्धन उत्सव के बाद ही फिर आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, फिर कल ठाकुर जी को विवाह उत्सव और परसों कथा विश्राम है। बहुत सावधानी से सब लोग बैठें और श्रवण करें।
बोलो झाड़ी वाले हनुमान जी महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास भगवान की। भागवत प्रेमी बंधुओं, आज कथा का पंचम दिवस है और आप सब व्यास जी के शब्दों में ऐसे डूबे हुए हो कि बिल्कुल शांति रहती है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। बधाई गायन हुआ अभी व्यासपीठ से, नंदलाला को बहुत बहुत बधाइयां दी गई हैं और हम सब जो जितने भी यहाँ श्रोता बैठे हुए हैं भागवत के, उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हमारी अन्नपूर्णा सुधा शर्मा को, जिन्होंने अब एक नाती ने जन्म लिया है। ईश्वर उनकी बहुत लंबी आयु करे, बहुत दीर्घायु करे, उनके लिए लाख लाख बधाइयां। बहुत भक्तमयी हैं, बहुत सरल है और बहुत ही निष्पाप और निष्कपट हैं श्रीमती सुधा शर्मा। भजन ध्यान में, दूसरों की सेवा में ही अपना समय व्यतीत करती हैं। व्यास जी श्रीदामा ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आया, आपने अभी अपने मुखारविंद से कहा है, और हम सबको दशहरा के दिन का निमंत्रण दे रहे हैं। निमंत्रण श्रीदामा बनके मैं दे रहा हूं, जाने सुधा शर्मा दावत निमंत्रण को पूरा करवा के जाने। ये अन्नपूर्णा है, इनकी तरफ से सबको भंडारे का निमंत्रण है। जितने भी श्रोता आए हैं और वो अपने साथ और लोगों को लेकर के आए, बहुत विशाल भंडारा कराती हैं प्रतिवर्ष, उस भंडारे का भी निमंत्रण है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने सद्विचारों से हम सब भागवत प्रेमियों को लाभान्वित करें, जिनकी प्रेरणा से एक मेला लगता है। हमारी बहन बेटियां इसी भागवत में आती हैं, वो रक्षाबंधन पर नहीं आती हैं, भागवत में ही आती हैं मंत्री जी की प्रेरणा से।
एक बार जयकारा तो बोलो झाड़ी वाले का, बड़ा जोर से जोर लगाओगे इंसान नहीं। बोल झाड़ी वाले की। परम पूज्य व्यास जी महाराज, पांच दिन बीत गए हैं, दो दिन बाकी। अब दो दिन बाद का जो बिच्छो है उसने सताना शुरू कर दिया है। आपने अपनी वाणी से मुखारविंद से कल जो बात कही थी कि मैं टूटी फूटी कथा सुनाता हूं, हम सच कह रहे हैं हृदय से, और सरस्वती माता को हम लाख लाख बार नहीं करोड़ों बार शीश नवाते हैं कि कंप्यूटर तो अब चला है जो ट्रांसफर एंट्री करता है, और सरस्वती ने ठाकुर जी की पूरी वाणी हस्तांतरित कर दी है। इसलिए सरस्वती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसलिए मुझे कहने में आया कि जो टूटी फूटी कथा की जो बात की, मैंने जिंदगी में पूरी कथा सातों दिन कभी किसी की नहीं सुनी, कभी भी। और आपकी कथा छोड़ने को मेरा मन नहीं कर रहा। अब जो टूटी फूटी कथा की बात आपने कही, तो हमारे पूज्य पिताजी के साथ एक दिन नौजील के भी थे, पाठक जी के भी पिताजी थे, सभी लोग थे, फूली ताऊ और सब लोग थे, जितने लोग थे मंत्री जी के यहाँ पहुंच गए आचार्य जी के। उनके एक पीए का नाम था खरे, और उन्होंने कहा कि पंडित जी इन सबका काम कराना बैठ करके। पीए खरे ने 11:05 की कहके 11 से 12 बजाए, 12 से 1 बजाए, 1 से 2 बजाए, 2 से 3 बजाए, 3 से 4 बजाए, मंत्री जी लौट आए। उन्होंने कहा पंडित जी सबके काम हुआ कि नहीं हुए? बोले ए मंत्री जी ये लखनऊ का खरे है? बोले हाँ जी, कि लखनऊ में जब खरे ऐसे हैं तो खोटे कैसे होंगे? महाराज आपकी कथा ये आधी अधूरी है तो साजी कैसी होगी, जरा ये और बता दो हमें, ये समझ में नहीं आया। हम तो हनुमान जी के, व्यास भगवान जी, भागवत जी के पंछी, अब दो दिन बाद का जो बिच्छू हमें सता रहा है, अभी आपने अपनी वाणी से ये सुना दिया कि भगवान कृष्ण अपनी वो यज्ञ कर रहे थे, फर्जी थी, निमंत्रण दे दिया ब्राह्मणों को, वो भी कहा गया ऐसे भोजन ये कर ले, हमारा पेट कैसे भरेगा इस सब का? तो भगवान की तरह ऐसा आश्वासन तो मत देना जैसे भगवान ने दिया पंडितों को, हमें एक विश्वास दे देना। ठाकुर जी पे हम अधिकार समझते हैं, ठाकुर जी को मैं जब कहता हूँ, जब नहीं मिलती तो मैं कहता हूँ कि नहीं ठाकुर जी कथा, एक बार यहाँ आचार संहिता लग गई, व्यास कोई मिले नहीं, मैं कहा ठाकुर जी कोई व्यास देखो कि कोई नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा तुम का आप क्या करोगे, मेरी तो कथा लगी हुई है तो मैं कथा कैंसिल करूंगा। ठाकुर जी कथा कैंसिल कराई, मैं कराया क्योंकि मैं अंदर प्रवेश कर नहीं सकता था, इसीलिए कह रहे हैं ठाकुर जी की तरह ही हमारा मन प्रसन्न कर देना कि जब जब ये ब्रजवासी झाड़ी वाले के वंशज तुम्हें पुकारे तुम ना मत करना, ये हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी। तो इसलिए मैंने कहा कि हम पंछी हैं इसके, 357 दिन, 365 दिन बाद होंगे, 357 दिन हम इंतजार करेंगे और उस बिछो का करेंगे कि पुनः मिलन इस झाड़ी वाले पर होगा, हम लोग ये मान करके चलते हैं सबके साथ। और आज गिरिराज की पूजा होगी, मैं अंग्रेजी भी तो नहीं बोलूंगा लेकिन ढेर सारा साधुवाद आपको दे दूं, इसलिए कि कभी विद्वान लोग कहते हैं हमारी जिज्ञासा है, हाथ जोड़ के शीश नमा के आपसे प्रार्थना हमारी ये है कि विद्वानों में कभी कभी होता है कि गिरी के संवर्धन का नाम गिरिराज, और कुछ लोग कहते हैं कि गोबर के संवर्धन का नाम गिरिराज, कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ों के संवर्धन का नाम गिरिराज, और बड़े संतों ने यह बात कही कि नहीं, गिरी के संवर्धन का नाम गिरिराज नहीं है, गोबर के संवर्धन का नाम है, उन्होंने कहा इंद्रियों के संवर्धन का नाम गिरिराज है, ऐसा बताया उन्होंने। तो आज गिरिराज की पूजा होगी, आपकी वाणी से आपके आशीर्वाद के द्वारा होगी, ये टूटा फूटा 56 भोग भी लोगों ने पेश किया है भक्तों ने, हमने नहीं हनुमान जी ने पेश किया है, हम सब मिलकर के गिरिराज को शीश नवाएंगे और मिलकर के गिरिराज की पूजा करेंगे, और इस विश्वास के साथ करेंगे कि दो दिन हम ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, कल रुक्मिणी जी का विवाह देखेंगे, मिलकर के हम विवाह में नृत्य करेंगे और मिलकर के आनंद उठाएंगे, आनंद के बाद परमानंद उठाएंगे, उसके बाद परसों पूरी कथा सुनने के बाद अश्रुपूरित नेत्रों से व्यास जी आपकी विदाई करेंगे। जय झाड़ी वाले,
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। झाड़ी वाले के भक्त हो जनता के सेवक हो और सच्चे सेवक हो, रात दिन सेवा करते हो। कोई नेता नेता इस तरह की सेवा नहीं कर सकता है। सुबह 6 बजे से ही बैठ जाएं और 12-1 बजे तक वही दवाइयां ले लें और जब नहा करके खाना खा करके तुरंत क्षेत्र में निकल जाएं जनता के लिए, ऐसा कोई भी दूसरा नेता नहीं मिल सकता है। और जब यहाँ आते हैं व्यास जी, जब माननीय मंत्री जी यहाँ मंच पर आते हैं, भागवत पर झाड़ी हनुमान मंदिर में आते हैं, तो राजनीति की जूतियों को सड़क पर ही उतार के आते हैं। बिल्कुल विशुद्ध भाव से जनसेवक बन करके, हनुमान जी के सेवक बन करके आते हैं। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि मंत्री जी को नाती के जन्मदिन पर तालियां, घोर तालियां बजा करके बधाई दें, घोर तालियां बजा करके। हाँ, एक बात और कार्यकर्ताओं से कहनी है, झाड़ी हनुमान मंदिर के जो कार सेवक हैं कि जब भोग लग जाए तो इस प्रसाद को उठा करके वहीं ले जाना, आ जाना कल की तरह। ऐसा नहीं कि हम इंतजार करते रहे कोई भी नहीं आए, आ जाना वहीं मिला करके वो प्रसाद बांटा जाएगा। करवत निवेदन है, कल की सी भूल कोई मत करना। ये सारे गमले जो मंत्री जी ने कई हजार के गमले मंगाए थे आपको सुंदरता देने के लिए, आपकी आंखों को सुंदरता देने के लिए, वो आपने तोड़ दिए। बेसब्रों की तरह, दरिद्रियों की तरह अर्रा अर्रा के पड़े इस मंच पर। आज यहाँ कोई नहीं आएगा, ये सारा प्रसाद वहीं पहुंचेगा, आप सब लोगों के लिए वहीं वितरित होगा। कार्यकर्ता जब आ जाए, भोग लग जाए तो यहाँ आ जाए। धन्यवाद।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हमें तो, हम सच बताएं कि कथा के बीच में वैसे कोई भी बोले तो कथा में विक्षेप तो हो, लेकिन जब कोई सुंदर सज्जावान व्यक्ति अपनी सुमधुर वाणी से अच्छे वाक्य बोलता है तो वक्ता को और सुंदर आनंद आ जाता है। और ये वास्तविक में ये बात बिल्कुल सत्य है। बड़े बड़े संत भी बीच कथा में बोलते हैं तो मन करता है कब पूरा हो इनको, हम कब कथा शुरू करें। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी का मैं पहले दिन से ही, आपके जो बोलने का तरीका है उसका तो हम, मैं भी एक फैन जैसा हूँ कहेंगे ना, हम उसको बहुत चाहते हैं। तो आपने जो आज्ञा करी है यहाँ से, वो आपकी आज्ञा, आपके साथ में हनुमान जी की आज्ञा है। जैसे कि श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी जिस मार्ग पर पैदल गए हों उस मार्ग पर मैं रथ पर चढ़ के जाऊंगा, जहां मेरे ठाकुर पैदल चल के गए हों वहां मैं सिर के बल आऊंगा। तो ऐसे ही मेरे हनुमान जी महाराज जहां पर विराजमान हैं, जहां पर हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने कथाएं की हैं और जहां की, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जो आज्ञा की है, हम भी व्यासपीठ से वचन देते हैं। इस बार भी एक कथा आगे पीछे करके ही मैं आया यहाँ पे, और आप पुनः पुकारेंगे हनुमान जी की सेवा के लिए तो ये दास पुनः हनुमान जी की सेवा करने के लिए जब बुलाएंगे तब मैं आऊँगा जरूर। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। माननीय मंत्री जी और समस्त परिवारीजनों को बहुत बहुत प्रणाम। कथा प्रसंग में हम चलें। अब ठाकुर जी की लीला आदि को तो थोड़ा सूक्ष्म ही कर दें क्योंकि समय पूर्णता की ओर है। भगवान ने खूब माखन चोरी करी, माखन चोरी करवे के बहुत सारे देह बताए गए हैं भागवत में। अंततो गत्वा भगवान ने अपनी मैया की परीक्षा ली कि मैया तो कु दूध प्यारो है कि हम प्यारे हैं। मैया ने की लाला मुकु तो मेरो लाला प्यारो है। सो मैया से कहने लगे, मैया मुकु अपनो दूध पान करा। अब मैया अपने लाला को अपनी गोद में बैठा के दुग्ध पान कराने लगी। इतने में ही सामने अंगीठी पे गरम है रहे हो दूध, मन में विचार करे कि ठाकुर जी आज मेरो भोग नहीं लगाएंगे, आज मैया के दूध से ही अपनो पेट भर लेंगे। ठाकुर जी यदि मेरो भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी किसी और के मुख में नहीं जाऊंगा। तो दुग्ध उस अंगीठी से निकल करके खुद को नष्ट करने लगा, जलाने लगा। मैया ने जैसी देखी कि दूध बाहर आ रहा है सो लाला को दूर पटक करके मैया गई और जाके दूध संभालने लगी। भगवान को बहुत क्रोध आया। भगवान ने छड़ी हाथ में लेके सारे गौरस के मटकों को फोड़ दिया, सबसे दूध निकाल दिया। मैया मेरे तेरे बीच में दखलंदाजी जो देखो मैं बाकू नष्ट कर दूंगा। भगवान और भक्त के बीच में जो आएगा, भगवान कहते मुझको वो प्रिय नहीं है। जिस कारण से मेरा भक्त मेरे समीप आता है वो कारण मुझको प्रिय है, और जिस कारण से भक्त मुझसे विमुख हो जाता है वो कारण मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। मैं हनुमान जी के सामने जाऊं, नारियल चढ़ा दूं, हनुमान जी मन में विचार करेंगे भाई आज इंद्रेश कैसे आया हो मेरे पास। बोले भैया इंद्रेश बड़ा दुखी है, पैसान की कमी चल रही है, याचना कर रहो 20 रुपया को नारियल चढ़ा के हनुमान जी 2 करोड़ रुपया दे दो। हैं हनुमान जी कहेंगे किस कारण से आया? बोले दुखी है इसलिए आया है। तो हनुमान जी को तो प्रिय है कि मेरा भक्त बार बार आए, तो हनुमान जी कहते हैं इसको इतना सारा दुख दे दो ये बार बार आता रहे, बार बार मेरे समीप आवे। तो सदैव याद रखें अकारण सर्व कामो वा, भगवान के सामिप्य में बिना किसी कारण के जाना है। माता पिता के पास किसी कारण से जो पुत्र जाता है उसको श्रेष्ठ पुत्र नहीं माना जाता, जो निस्वार्थ भाव से माता पिता के पास जाता वही श्रेष्ठ पुत्र माना जाता है। ऐसे ही भगवान विचार करते माँ तू दूध यदि मेरे और तेरे प्रेम के बीच में आवेगा मैं वाकू छोड़ूंगा नहीं। मैया ने मन में विचार कियो लाला बहुत ऊधम करन लगो है, आज याकू सबक सिखानो पड़ेगो। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया छड़ी लेके दौड़ रही है। भगवान दूर जाकर के एक वृक्ष के पास खड़े है गए। इसके भी बहुत सुंदर भाव हैं। वो भाव कैसे हैं? मैया पसीना में लथपथ है गई, जोर जोर से श्वास ले रही है एक जगह बैठ के। भगवान दूर से मैया से पूछे मैया तू हार गई है? मैया के हाँ लाला मैं बहुत जोर से हार गई हूँ। तो भगवान पूछे मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले मेरो लाला यदि मेरी गोद में आ जाएगा तो मेरी हार दूर है जाएगी। अब यह बात को सुन के भगवान के मैया मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी है यहां से मुंह को डर लगे। अब इस भाव के पीछे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सावधानी से सुनिए, यहां पर यशोदा कौन है? भगवान से संबंध रखने वाला भक्त ही यशोदा है, भगवान में पुत्र दृष्टि रखने वाला भक्त ही यशोदा है। लेकिन जब वही भक्त भगवान से संबंध जोड़ते जोड़ते एक दिन अहंकार रूपी छड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है तो भगवान कहते हैं अहंकार से मुझको डर लगता है। जो व्यक्ति अहंकारी मैं सदैव उससे दूर ही रहता हूं। मैया तू या छड़ी को फेंक दे मैं तुरंत आ जाऊंगा। जैसे ही मैया ने छड़ी फेंकी भगवान दौड़ के उनके पास आ गए। मतलब अपने अहंकार को सदैव प्रयास करें कि हम खुद से दूर रखें। मनुष्य का सबसे बड़े शत्रु दो हैं अहंकार और आलस्य। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अहंकार को सदैव दूर रखें। मैया की गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए मैया ने जाकर के लाला को उखल से बांध दिया। मतलब क्या है? अहंकार रहित यदि भक्त हो जाए तो भगवान को भी बांधने की सामर्थ्य है उसमें। अहंकार रहित मैया हुई, लाला को उखल से बांधा। लाला ने दो वृक्षों के बीच से जैसे ही निकले भगवान के स्पर्श पाते ही दोनों वृक्ष गिर गए। नल कुबर मणिग्रीव दोनों प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया कि वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनुना। प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो हमारी वाणी आपके गुणगान गावे, हमारे कर्ण सदैव आपकी कथा श्रवण करें, हमारे प्रत्येक अंग आपकी सेवा करते रहें, बस यही कृपा कर दो। भगवान ने नलकुवर मणिग्रीव को मुक्त किया। सबने विचार किया, बोले जा दिन से हरि गोकुल में प्रगटे हैं, कोई ना कोई विपत्ति हरि पर आ रही है, हमारे लाला पे आ रही है, अब गोकुल में नहीं रहेंगे। सब छोड़ के श्री वृंदावन धाम प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की वनम वृंदावन नाम पशव्यम नव कानन गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादृतं विरुधम। भगवान वृंदावन पधारे, वृंदावन में आकर के भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर के बाद भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों का हरण किया। भगवान ने ब्रह्मा की स्तुति के गाने के बाद भी ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा ने इतनी बड़े अपराध कर दिया, भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर दिया, और उसके बाद में जब पता चला कि ये तो साक्षात ईश्वर हैं, तो भगवान की स्तुति गाने लगा कि नौ मिड्यते ब्रह्मपुषे टडिदं वराय गुञ्जावतं शपरिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजय कवलवेत्रविषादवैणु लक्ष्मीश्रिये मधुपते पशुपांकजा। भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। आगे भगवान की पौगंड अवस्था प्रारंभ हुई। भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से सभी गोपियों पर कृपा की, कालिया मर्दन किया, कालिया मर्दन की कथा बताई गई। भगवान मथुरा गए, मथुरा की गोपियों पर जाकर के कृपा की है। गोपियां सब रोज यमुना स्नान करती हैं, कात्यायनी से भगवान को पति रूप में मांगती हैं। भगवान ने वहां जाकर के सबका चीर हरण किया और सभी गोपियों को आश्वासन दिया, हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके साथ रास करेंगे। इस प्रकार से भगवान की सभी लीलाओं को संक्षिप्त रूप से मैंने स्पर्श मात्र किया है। भगवान आज गौचारण करके वापस जैसे ही लौटे तो पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, जैसे ही गौचारण करके वापस लौटे पूरे ब्रजमंडल में महाराज देसी घी की सुगंधी सुंदर। भगवान ने मैया से जाके पूछी, मैया जे कहा बन रहे हो है? मैया बोली, लाला दूर दूर दूर, तू देख अभी बनते आयो है, तेरे पूरे अंग पे माटी लगी है, तू यहाँ आवे को सबरो भोग बिगड़ जाएगो, बाबा ते जाके पूछ। भगवान नंद बाबा के पास गए, जाके पूछी, बाबा ये इतने 56 भोग कौन के ताई बन रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला इंद्र हमारे स्वामी हैं, हमारे देवता हैं, हम किसान हैं, हम हर वर्ष उनकी पूजा करें तो इंद्र कभी अतिवृष्टि नहीं करते, जब वृष्टि करनी होती तब वृष्टि करते हैं और जब नहीं करनी होती तो हम लोगों को ध्यान रखें। भगवान इस बात को सुनकर के बाबा से कहते हैं, बाबा इंद्र वर्षा करे या मारे हम बाकी स्तुति करें, आप करो लेकिन मैं नहीं करूंगा, तो हम दोनों के खेत यदि अलग अलग होंगे तो आपके खेत में बारिश होगी, मेरे में ना होगी? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विनीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कर्म को प्रधान बताया। देवता किसी ना किसी प्रयोजन के लिए भगवान ने 33 करोड़ देवताओं को नियुक्त किया है। उन देवताओं की पूजा यदि करोगे, एक की करोगे दूसरा रूठ जाएगा। ऐसे तो फिर सूर्य की पूजा रोज करनी चाहिए, बेचारो रोज प्रातः काल है करके शाम तक हमको रोशनी प्रदान करे, बाकी पूजा क्यों नहीं करते हो? रात्रि के चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए, वो शीतलता प्रदान करता है। वायु देवता की भी पूजा करनी चाहिए, वरुण देवता की। बाबा यदि केवल इंद्र की पूजा करोगे तो बाकी के देवता रुष्ट रह जाएंगे। बोले बेटा तू ही बता हम कहा करना चाहिए। बोले वृक्ष को हरा भरा करना है तो पत्तों में पानी नहीं, उसकी जड़ में पानी डालो। ये 33 करोड़ देवता, इन सब के मूल आधार हैं श्री गोवर्धन नाथ, श्री नारायण भगवान। आप उनकी पूजा करोगे 33 करोड़ देवताओं की पूजा का फल मिलेगा। पिताजी आप उनकी सेवा करो। वयोवृद्ध कहने लगे, आजकल को छोरा इंद्र की पूजा बंद करवा रहे हो, इंद्र नाराज है गए तो? बोले आप गोवर्धन नाथ की शरण में जा रहे हो, उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी 56 भोग सजा सजा करके श्रीदेव गोवर्धन जा रहे हैं। गोवर्धन जाकर के सब ब्रजवासी ने परिक्रमा लगाई, गिरिराज जी को अभिषेक किया, 56 भोग सजाए हैं। सब ब्रजवासी से भगवान ने कही, नेत्र बंद करके सब प्रार्थना करो, गिरिराज जी महाराज प्रकट है के भोग लगाएंगे। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज बंद करके गान करने लगे, श्री गिरिराज महाराज को प्रसन्न करने लगे। इतने में ही चार भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, श्री गोवर्धन नाथ कहने लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के भोग को ले जाएं, गिरिराज बाबा हाथ में लें और पूरा मुंह खोल के अपने मुंह में गप से खा जाएं। सब ब्रजवासी घबराए, बुरे लालाई ने कहा प्रसाद छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो तेरो गोवर्धन नाथ? बोले ऐसे काई कुछ सोचो, इंद्र ने तो कभी तुम्हारो बनायो भयो एक प्रसाद कभी चखो भी नहीं, आज गोवर्धन नाथ कम से कम प्रकट है के पातो रहे, खूब प्रेम से पवाओ। सब ब्रजवासी ने खूब प्रेम से पवायो। इंद्र आकाश में बैठा, उसको कुछ नहीं पता। तभी नारद जी आए और 56 भोग में से एक एक भोग उठा के ले गए। इंद्र के पास गए और इंद्र ने खूब स्वागत किया, आओ आओ नारद जी कैसे आए? बोले अरे इंद्र जरा हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया, बोले लो मोहन थार पाओ। इंद्र बोलो महाराज बड़ो सुंदर स्वादिष्ट मोहन थार है, कहाँ ते लाए हो? बोले बढ़िया लगो। बोले हाँ बहुत बढ़िया, ले रसगुल्ला पा। रसगुल्ला पायो, बोले महाराज ये भी बड़ो स्वादिष्ट है, कहाँ से लायो? ने बताओ तो सही। बोले तो को अच्छो लग रहो है कि ना लग रहो? बोले बहुत आनंद आ रहो। बोले थोड़ी देर बाद बहुत बुरो लगेगो। ले पेड़ा पा, पेड़ा खायो। बोले महाराज ये भी बड़ो स्वादिष्ट है, कहाँ से लायो? बोले वो क्या है, आजकल तुम्हारी पूजा बंद है गई है और माँ गोवर्धन नाथ के 56 भोग लग रहे हैं, वही को प्रसाद तुमको खवावे लायो। ये नारद जी बड़े विचित्र महात्मा है, भगवान के पक्षधर हैं कि भगवान के विपक्षी हैं, कछु पता ही ना चले। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश कर दिया, इन ब्रजवासियों की अब तक रक्षा की मैंने, कभी अतिवृष्टि नहीं, कभी कभी अनावृष्टि नहीं की मैंने, और ये लोग मेरी पूजा छोड़ करके उस पाखंडी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। मेघमालाओं को आदेश कर दिया, इतनी बारिश करो पूरा ब्रजमंडल जल में डूब जाए। गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादलों ने आकर के ब्रजमंडल को डेरा बना लिया। सब ब्रजवासी घबरा गए, बोले लाला हमने तो पहले ही कही कि गोवर्धन नाथ नाराज हो जाएंगे, अब हमारी रक्षा कौन करेगो? बोले ये गोवर्धन नाथ ही तुम्हारी रक्षा करेंगे इंद्र के प्रकोप से, डरो मत तुम लोग। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, नेत्र बंद करके बैठे हैं। जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, 7 बरस के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी एकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान के। सब ब्रजवासी पहुंचे हैं और सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगाई है। ब्रजवासी सब कहने लगे, लाला तू हार गए होगो, चल अपनी उंगली नीचे कर ले, हम सब ने छड़ी लगा रखी है। भगवान बोले तुम्हें कहा लगे तुम्हारी छड़ी पे टिक रहे हैं ये? बोले तू का सोच रहे हो तेरी उंगली पे टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो। अरे लाला तू बात मत बनावे, तू उंगली नीचे कर ले, सही पूछे तो हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं, तू नीचे कर ले, सो जा चल, हम सब ने छड़ी लगा रखी है। भगवान बोले ठीक है फिर रोक लियो या गिरिराज पर्वत को। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली नीचे करी, पूरो गिरिराज पर्वत नीचे आन लगो, सबन की छड़ी टूटन लगी। अरे लाला बचा 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 बचा, कन्हैया ने फिर से अपनी कन्नी उंगली लगाई, गिरिराज पर्वत टिक गए। सब ब्रजवासी ने पूछी लाला तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई? भगवान कह रहे कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु को पन करी सहारा, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, 56 भोग तो महाराज लग गए, अब कर दो हैं? हाँ वही कह रहे हैं। सब ब्रजवासी घबराए, लाला तो मैं इतनी शक्ति कहां से आई, तो को हमें बतानो ही पड़ेगो। भगवान कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, थोड़ा थोड़ा खोल खोल के डाल दो। कछु तो माखन को बल बढ़ो, और कछु इन सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी, वासे मेरो बल बढ़ो, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरीवर लियो उठाए। कल वो तो पूजा आज, हाँ हाँ नहीं कल शालिग्राम जी आदि कछु हैं यहाँ पे अभिषेक के तय पूजन करवाओ। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, बोले भैया श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। गर्ग समिता में इस भाव को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। नंदरानी यशोदा ने लाला के शिलाखंड के पीछे जाकर के देखो, तब उनको पता चली कि भैया लाला तो केवल अपनी इकन्नी उंगली लगा करके खड़े हैं, वास्तविक में श्री राधिका रानी ने अपनी भ्रगुटी पर गिरिराज जी टिका रखे हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। क्या तरीका से गोवर्धन लीला की ये भाव बताए गए। इंद्र का मान मर्दन हुआ, इंद्र भगवान के पास पधारे और भगवान से आकर के उन्होंने प्रार्थना करी है, भगवान से आकर के स्तुति गाई है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्थ रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणा बंध। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, स्तुति के बाद में भगवान ने उसको क्षमा किया है, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। ब्रह्मा ने स्तुति गाई लेकिन ब्रह्मा को प्रभु ने क्षमा नहीं किया, इंद्र को भगवान ने क्षमा प्रदान की, क्योंकि इंद्र की कृति से भगवान के सभी भक्त भगवत सन्निकट आ गए थे। एक भाव श्री गोवर्धन नाथ जैसो कि आज पूज्य मंत्री जी बता रहे थे, गोवर्धन का अर्थ क्या बताया है, गौ माने क्या होता है, गौ माने गौ के अनेकों अर्थ बताए गए हैं। बिहार गौ के अनेकों अर्थ बताए हैं, गौ माने गाय भी है और गौ को ज्ञान भी कहा जाता है। तो इस भाव से गोवर्धन का मतलब जो ज्ञान का वर्धन करें वो भी श्री गोवर्धन है, और गौ माने इंद्रियां भी हैं, मनुष्य की शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वे सब गोवर्धन हैं। तो इन इंद्रियों का वर्धन करने वाले, अब इंद्रियों का वर्धन सुनो कैसे होता है, जैसे कि आज से 20-22 वर्ष पहले मैं इतनो सौ, लेकिन आज मेरो वो स्वरूप मेरे हाथ से भी छोटो मानो जाएगो, तो मेरे इस शरीर का वर्धन किसने किया? संपूर्ण विश्व में शरीर का वर्धन, इंद्रियों का वर्धन श्री गोवर्धन नाथ करते हैं, लेकिन हमारे ब्रज के श्री मास्टर बाबा थे गया प्रसाद जी के शिष्य, वे कहते थे, बोले इंद्रियों का वर्धन तो सबका होता है, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, जिनकी इंद्रियां भगवान के भजन में लगी हैं, तो उनकी इंद्रियों का भगवान की भक्ति में जो संवर्धन करे वो है श्री गोवर्धन। जैसे कि मैं अपने कानों से कथा सुनूं तो गिरिराज जी की शरण में जाऊंगा तो मेरे कानन की कथा सुनने की इच्छा और ज्यादा तीव्र रह जाएगी, तो वह कान की इच्छा को जो वर्धन करें वो श्री गोवर्धन। और सबसे बड़ी बात, हम आप सब लोग एक दो किलो को पत्थर लेके यदि हमते कह दी जाए कि नौ झील तक जाओ तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम सब लोग अपने 70 किलो के, 80 किलो के, 100-100 किलो के शरीर को लेकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लें या शरीर को वर्धन कौन करें? श्री गोवर्धन नाथ करें, इसलिए उनको नाम है श्री गोवर्धन। अब दूसरी बात, श्री गिरिराज महाराज ब्रजमंडल में शिला बन के क्यों विराज रहे हैं, जबकि चतुर्भुज रूप नारायण भगवान ही शिला बन के आए हैं। सावधानी से सुनियो, ये बात बहुत समझने की है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कथा पूरी करके कल कहूंगा, लेकिन मोह लगी शुरुआत में लोग आमे ना अभी सब बैठे तो अभी कह दूं। गिरिराज जी ब्रजमंडल में शिला बन करके पत्थर के रूप में क्यों विराज रहे हैं? तो या को भाव इतनो विलक्षण है कि सुन के मन प्रफुल्लित है जाए। भगवान कह रहे हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। बहुत सुंदर भाव है इसका। भगवान कह रहे हैं दो भक्त होते हैं मेरे, एक तो होता है भक्त और दूसरा होता है प्रपन्न। प्रपन्न में और भक्त में भेद क्या है? भक्त किसे कहते हैं? मेरे हाथ में माला होगी तो ही नाम जपूंगो, सामने मंदिर होगा तो ही दर्शन करूंगो, कथा होवेगी तो ही सुनूंगो। मतलब उसको भगवत भजन के लिए साधन की आवश्यकता है। और प्रपन्न किसको कहते हैं? बोले आज बिहारी जी के दर्शन करने की इच्छा है। इतने में ही माने नेत्र बंद किए, बोले अरे वाह ठाकुर जी तो मेरे सामने खड़े भए हैं, आज तो नाम जप करने की इच्छा है। वाकु माला की जरूरत ना है, वो अपने जिह्वा पर ही नाम जप कर ले। जिसको भगवत प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता नहीं उसको कहते हैं प्रपन्न, और जिसको भगवत प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता उसको कहते हैं भक्त। तो गिरिराज महाराज कह रहे हैं मुझको वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए, अपुनर्भवम्बा मुझे साम्राज्य पृथ्वी का भी नहीं चाहिए, नरसाधिपत्यम मुझे रसातल का भी राजा नहीं बनना। तो किसी ने पूछा भगवान आपको क्या चाहिए? बोले वांछन्ति यत्पाद रजप प्रपन्न, बोले प्रपन्न भक्त जो कि श्री ब्रजमंडल में विराजमान रहते हैं वे जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो जब जब हवा चले तो उन प्रपन्न भक्तों की चरण रज मेरे माथे से लगे, इसलिए मैं गिरिराज बन के बैठा हूं। हम लोग भगवान की चरण चाहते हैं लेकिन गिरिराज जी भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं, उन भक्तों की चरण रज पाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज रूप में विराजमान है। ये भाव तो एक पद आज भी गोवर्धन में गाया जाता है जिसको गाकर के श्री गिरिराज जी को शयन कराया जाता है, सुलाया जाता है। तो मेरो भाव आज की कथा विश्राम में उस पद को ही गा करके भागवत जी को शयन कराया जाए। आप सब लोग मेरे साथ में गई हो, उच्च स्वर से गई हो, ये पद बहुत प्यारो है।
गोवर्धन प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल Yeah.
हरिदास वर्य गोवर्धन नाथ की, झाड़ी वारे हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय जय।
श्री राधे
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गोवर्धन नाथ जी की मंगलमय आरती, आज श्री गिरिराज जी की आरती यहाँ होगी। आप सब लोग समय से कथा में पधारें, दो दिन की कथा शेष है, कल और परसों समय से कथा में आकर के कथा का रस स्वाद पान करें। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, खूब खूब प्रणाम।
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।